एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
वो ही मेरा खुदा है। सच्चा खुदा है, मुक्ति देता है, शक्ति देता है, वो ही मेरा खुदा है। इसलिए आज हम गाते हैं और खुशियां मनाते हैं, इसलिए आज हम गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। वो ही सच्चा खुदा है, आओ नाचे और गाए हम, आओ नाचे गाए हम आज मसीहा के नाम पे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे, और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरा वचन को समझने के लिए और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करे, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अंतिम संकट के लिए मजबूत और सक्रिय। आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़े जो याकूब की पत्री से मिलता है, याकूब की पत्री 1:12 में हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अंतिम संकट क्या है? यह परमेश्वर की कलीसिया के लोग को कैसे प्रभावित करता है और हम इसे विजयी होकर कैसे निकल सकते हैं? प्यारो, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मिशन और संकट दोनों साथ में हैं। इज़राइल को अन्य जातियों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व ऐसे आकर्षक ढंग से करना था कि अन्य जातियां उनकी ओर खींची चली आए, जैसा कि लिखा है यशायाह 56:8 में। इस मिशन कि सफलता में शब्द का पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, जैसा कि हम पढ़ते हैं 1:2, 6, और 7 में। इसी उद्देश्य से प्रभु यशायाह 58:12-14 में और भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। इन आयतों को पढ़ने के लिए आप समय निकालें। यशाया 58:12-14 में सबत को मानने से, अपना मन से मानने से, खुशी से मानने से परमेश्वर बहुत आशीष अपने लोगों को देने की प्रतिज्ञा की है। आज कलीसिया का मिशन भी इससे अलग नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था तब भंग हुई जब उसकी चौथी आज्ञा के सबत को छोटे सिंह की शक्ति ने बदल दिया, जैसे कि हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक उसका 7:23-25 में। लेकिन परमेश्वर के पास एक शेष जाति होगी जो इस भंग को भर देगी, खासकर सुसमाचार के प्रचार के जरिए, जैसा कि 3 स्वर्गदूतों के संदेशों में पाया जाता है जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 14:6-12 में। इन संदेशों की घोषणा से दुनिया भर में एक संकट पैदा होगा कि लोगों को परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए या मानवीय परंपराओं का। आज का पाठ इस संकट पर नहीं बल्कि मसीह पर और इस बात पर केंद्रित होगा कि वह हमें शेष जनों का एक सफल हिस्सा बनने में कैसे मदद कर सकता है। हमें आश्वासन है कि कलीसिया एक ठोस नींव पर बनी है और इसलिए संकट के दौरान भी इसे हिलाया नहीं जा सकता। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:19-22। इसमें लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पत्रस एक सच्चे मसीह के प्रगतिशील अनुभव को व्यक्त करता है, जिसे हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 1:5-11 में। मैं इसे पढ़ता हूँ 5 पद से, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पत्रस विश्वास से शुरू करता है और प्रेम पर खत्म करता है। पत्रस की अद्भुत सीढ़ी हमें एक फलदायी आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने में मदद करती है। विश्वास में बढ़ते रहने से हम परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:18-20 में पौलुस कहता है कि इस कार्य में मसीह के राजदूत बनना और दूसरों को उसके साथ मिलाना शामिल है। हम परमेश्वर के हाथों में उपयोगी उपकरण बनने के लिए बढ़ते हैं। उनके दूत के रूप में हम मेल मिलाप के साधन बनते हैं। हमें इन अंतिम दिनों में दुनिया को परमेश्वर के पास लाने के लिए एकजुट मोर्चा के रूप में एक साथ लाना है। हमें परमेश्वर के संपूर्ण हथियार को बांध लेने के लिए पौलुस सलाह देता है। हम दुष्ट के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और हम उस पर विजय पाना चाहते हैं। पौलुस सलाह देता है कि हम परमेश्वर के संपूर्ण हथियार बांध ले। इफिसियों 6:10-17 में हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा या मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। आगे 14 पद से आगे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बुरे दिनों में परमेश्वर के हथियार इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें पौलुस इफिसियों 5:16 में समय को बहुमूल्य समझकर उसका सदुपयोग करने का सलाह देता है। हमारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 5:8 में, वह इन अंतिम घंटों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने, धोखा देने, कमजोर करने और नष्ट करने के लिए कर रहा है। इफिसियों 6:18 में पौलुस आगे कहता है कि सावधानी से चलने और परमेश्वर के हथियार बांधने के साथ साथ हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमें प्रलोभन में विजयी होना है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2:18, याकूब 1:12 और प्रकाशित वाक्य 3:10 में, प्रलोभन देने वाला कभी शांत नहीं बैठता, वह हर जगह और सबके विरुद्ध काम करता है। हमें इस तथ्य को याद रखना चाहिए ताकि हम मसीह के माध्यम से उसके पवित्र स्वर्गदूतों की सहायता से उसका विरोध कर सके। यदि हम आत्मविश्वासी हो जाएं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध की उपेक्षा करने लगे तो हम अपने शत्रु के शिकार हो जाएंगे। जो समझता है कि वह स्थिर है वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, पौलुस सलाह देता है 1 कुरिन्थियों 10:12 में। यह जानना उत्साहवर्धक है कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ साथ बचने का मार्ग भी निकालेगा। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10:13 में, हमें अक्सर अपनी कमियों और गलतियों के कारण यीशु के चरणों में झुकना और रोना पड़ेगा, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यीशु उन लोगों के लिए क्या कर सकता है जो परीक्षा में पढ़ते हैं और क्यों? इब्रानियों 2:18 में हम उत्तर पाते हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। क्यों यहाँ कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आगे हम पढ़ते हैं बहन एलन वाइट की लिखी किताब है चर्च के लिए गवाही खंड 3:280 में, एक विजेता के रूप में उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी जीत का लाभ दिया है, ताकि शैतान के प्रलोभनों का विरोध करने के हमारे प्रयासों में हम अपनी कमजोरी को उसकी ताकत के साथ, अपनी अयोग्यता को उसकी योग्यता के साथ जोड़ सके। हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में और यूहन्ना 5:39 में हम यह बात पाते हैं। पौलुस हमें 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में सलाह देता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। प्रार्थना के बिना ईश्वर के साथ संबंध बनाना असंभव है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति पाने और उनसे बात करने में विशेष आनंद आएगा। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, तो फिर हम उनके साथ निरंतर संवाद के बिना जीवन जीने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। जब एक ईसाई गृहिणी ने कहा कि वह हर समय प्रार्थना करती रहती है, तो उसकी एक सहेली ने पूछा, अगर आप हर समय प्रार्थना ही करती रहेंगी तो आप कोई भी काम कैसे कर पाएंगी? पहली महिला ने इस तरह उसको जवाब दिया, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं ईश्वर से अपनी आत्मा धोने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब मैं कपड़े प्रेस या आयरन करती हूँ तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे चरित्र की झुर्रियाँ मिटा दे। और जब मैं फर्श साफ करती हूँ तो मैं यीशु से अपने हृदय के कक्षों को साफ करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना के अलावा हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के अध्ययन के द्वारा उसके संगति में आ सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:39 में, जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाती है। हम वचन के भोजन के बिना अपने आध्यात्मिक जीवन को पोषित नहीं कर सकते। बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम शत्रु पर विजय प्राप्त करना सीख सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह मरुभूमि में शैतान को वचन से हराया, इसके विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती 4:1-11 में। इसलिए प्यारो भाई और बहनों, रोजाना बाइबल अध्ययन करने की आदत बनाइए। हमें अपने हृदयों की खोज करना है। पवित्र आत्मा के साथ आरंभिक कलीसिया के अनुभव का वर्णन हम प्रेरितों के काम 2:1-2 में पाते हैं। पवित्र आत्मा उनके लिए सक्षम था। ध्यान दीजिए, पहला, मसीह के अनुयायी एकजुट थे। दूसरा, वे प्रार्थना कर रहे थे। तीसरा, आत्मा उन पर एक दृश्य अभिव्यक्ति के साथ आया जिसमें एक शक्तिशाली हवा और आग की जीव शामिल थी। चौथा, उन्होंने अन्य देशों के लोगों की भाषाएं बोलना शुरू कर दिया जो यरूशलेम में रह रहे थे। पवित्र आत्मा हमें क्या करने के लिए सक्षम करेगा, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में। यह पद हमें 4 उत्कृष्ट बातें बताता है। पहला, एक प्रतिज्ञा, आत्मा का आगमन। दूसरा, एक शक्ति, परमेश्वर का कार्य करने की दिव्य शक्ति। तीसरा, एक आदेश, प्रभु के साक्षी बनना। चौथा, एक क्षेत्र, पूरा विश्व हमारे समुदाय से लेकर पृथ्वी के छोर तक। आत्मा हमारे जीवन को पवित्र करता है और हमें सुसमाचार सुनाने और परमेश्वर का कार्य पूरा करने की शक्ति देता है। वह दिन शीघ्र आ रहा है जब प्रभु अपनी महिमा से सारी पृथ्वी को प्रकाशित करने का अपना वादा पूरा करेगा। अपने जीवन का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने से रोक सकती हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने में आपकी सहायता करें। प्यारो, हम किसी भी समय में नहीं जी रहे हैं। हम वह समय में हैं जब प्रभु हमें अपनी आत्मा की अग्नि और सामर्थ्य से भरने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर हमें जागृत होने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंत निकट है। हर गुजरता हुआ क्षण स्वर्गीय दरबार में गतिविधि का एक हिस्सा है, ताकि पृथ्वी पर लोगों को उन महान दृश्यों में भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके जो जल्द ही हमारे सामने खुलने वाले हैं। यह गुजरते हुए क्षण जो हमें बहुत कम मूल्य के लगते हैं, शाश्वत हितों से भारी हैं। ये आत्माओं के भाग्य को अनंत जीवन या अनंत मृत्यु के लिए गढ़ रहे हैं। आज हम लोगों के कानों में जो शब्द बोल रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, जो संदेश हम पहुंचा रहे हैं, उसकी भावना जीवन के लिए जीवन या मृत्यु के लिए मृत्यु का स्वाद होगी। मेरे भाइयों, क्या आप समझते हैं कि आपका अपना उद्धार, साथ ही अन्य आत्माओं का भाग्य हमारे सामने आने वाली परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पर निर्भर करता है? प्यारो, यह कमजोर मसीहों के लिए समय नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनमें दृढ़ता से स्थिर रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें, प्रलोभनों का सामना करने में दृढ़ रहें और मसीह की गवाही देने में दृढ़ रहें। यह तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा को अपने हृदयों में कार्य करने दें और हमें अपने उद्धारकर्ता के चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए सशक्त बनाएं। इसलिए प्यारों, आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपने हृदय को खोल दे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने दे। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने दे, क्योंकि समय निकट है, दुनिया का अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वह चाहते हैं कि हम तैयार हो जाए, उसके चरित्र को हम अपनाएं, उसके चरित्र को हम पहन ले और उसके गुणों को, सद्गुणों को हम दूसरों को प्रतिबिंबित करें, उसके सच्चाई को, उसके ज्योति को हम दूसरों को चमकाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे जब यह विश्वास करते हैं और यह काम करने के लिए परमेश्वर का मदद लेना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करता है। तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तू हमें बुलाता है, तू हमें शक्ति देना चाहता है, तू अपने समान अपना चरित्र हमें देना चाहता है ताकि हम तेरे राह में चल सके और तेरे गुणों को दूसरों को दर्शाए, तेरे ज्योति को चमकाए। इसके लिए हमें तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे पिता, हम सबों को तू आशीषित कर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, विशेष रूप से मेरे श्रोताओं को तू आशीषित कर, हम सबों को तेरे नजदीक लाते यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।